أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عید کے خطبے پر میں نے اپنی اہلیہ کی وفات کے حوالے سے جماعت کے مردوں کو پردرد اور پرزور نصیحت کی تھی کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کیا کریں اور ان کے اہل و عیال کو ان کی والداؤں اور ان کی بہنوں وغیرہ کو بھی اس نصیحت میں شامل کیا تھا اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض اوقات بے بس اور کمزور عورتیں اپنے سسرال کی طرف سے طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنتی ہیں اور کچھ کر نہیں سکتی تو ان کی مظلومیت میں بے اختیاری کی حالت ایک ایسی دردناک کیفیت ہے جو یقیناً ظالموں کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعاؤں کے ذکر میں جو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں مظلوم کی دعا کو بہت اہمیت دی ہے کہ یہ دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی تو اس وجہ سے جو نصیحت کی گئی وہ مردوں یا ان کے خاندان والوں کے خلاف بات نہیں تھی کسی غصے یا بغض کے نتیجے میں نہیں تھی نہ اس کا کوئی موقع تھا نہ اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ ازراہ ہمدردی میں نے ایسا کہا لیکن عید کی ملاقات کے دوران ایک صاحب ایسے ملے جو اس پر بہت ہی خفا اور ناراض تھے اور مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ بعض دفعہ ایک ہی طرف کی باتیں کرتے رہتے ہیں دوسری طرف کا خیال ہی نہیں کرتے کیا عورتیں مظلوم ظالم نہیں ہو سکتی بڑی بڑی ظالم عورتیں بھی ہوتی ہیں اس بات پر میں ان کو سمجھایا کہ ابھی میں نے مستورات کی طرف سے ہو کے آیا ہوں اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ان کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کریں لیکن یہ موقع ایسا تھا جس سے میں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اگر کسی ایک غم کے نتیجے میں کثرت سے خوشیاں پھیل جائیں تو یہ تو بہت اچھا سودا ہے اس میں کوئی شکوے یا ناراضگی کی بات نہیں ہمارے واقعہ یہ ہے کہ میں اس بات سے خوب باخبر ہوں کہ عورتیں بھی ظالم ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کو برباد کر دینے کے موجب بن جاتی ہیں عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کی طبیعت میں فساد پایا جاتا ہے اور نشوز پایا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد جو بعد ازاں بڑے ہو کر عورتوں پر مظالم کا موجب بنتے ہیں ظلم کا موجب بنتے ہیں وہ ایسی ہی ماؤں کی گود میں پلتے ہیں جو ظالم صفت ہوتی ہیں اور ان کے اندر یہ ایک صفت خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے مقابل پر اپنے بیٹوں کو خدا بناتی ہیں और बहुत ज्यादा उनकी इज्जत की जाती है और उनकी हर जायज नाजायज बात को बर्दाश्त किया जाता है। उनकी अपनी बहनें उनके सामने घर में लौंडियों की सी हैसियत रखती हैं, किसी की मजाल नहीं कि अपने भाई के खिलाफ कोई शिकायत भी कर सके। चुनांचे ऐसे घर भी हैं जहां वाकयातन औरतें मर्दों की अमलन परस्तिश करती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी माशरती खराबियां हैं जो औरत से जन्म लेती हैं, औलाद में पनपती हैं और बड़ी होकर औलाद जब बड़ी होती है तो साथ साथ वो बुराइयां भी नश्व नुमा पाती हैं और मुआशरा गंदा हो जाता है। लेकिन ये बात उनके जहन में नहीं आई कि इन सब नसीहतों का वो मौका नहीं था। एक औरत की मौत के हवाले से अगर औरतों को नसीहत की जाती कि तुम जुल्म ना करो तो बहुत ही बदजेब और बेहुदा सी बात होती, मजाक से गिरी हुई एक बात थी और उसका पैगाम दुनिया को यह मिलता कि गोया मैं अपनी बीवी के मजालिम की शिकायत कर रहा हूं। बराह रास्त उसको कुछ नहीं कहता लेकिन इस नसीहत के बहाने उसको कोस रहा हूं कि तुम ये जुल्म करके मुझ पर गई हो। तो मौका और महल की मुनासिबत से बात होनी चाहिए। यह हरगिज मतलब नहीं था कि मैं दूसरी तरफ की कमजोरियों से नावाकिफ हूं। एक पहलू तो ये था जो वजाहत के तौर पर बयान करने के लायक था, लेकिन इस जमन में और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखनी चाहता हूं। जुल्म के मुख्तलिफ मेयार हैं और इसका इंसान के एहसास के मेयार से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान अपने मिजाज के मुताबिक करता है और उनको जुल्म नहीं समझता, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको इंसान बाज़ दफा आम अखलाक से गिरा हुआ नहीं देखता लेकिन खुदा के नजदीक या उन लोगों के नजदीक जिनके अखलाक बुलंद हों वो बातें अखलाक से गिरी हुई होती हैं। तो मुख्तलिफ जिंदगी के इंसानी मुख्तलिफ मेयार हैं जिनके साथ इंसान की नजर नए पैमाने तराशती रहती है और उन पैमानों में नई सूरतें देखती रहती है। बस अपने सुलूक को जो गैर के साथ किया जाता है देखने के भी मुख्तलिफ पैमाने हैं जो नजर की लताफत के साथ साथ बदलते रहते हैं। हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की नजर की लताफत ऐसी थी और आपके अखलाक का मर्तबा और मुकाम इतना बुलंद था कि वो बातें जो आप अपने लिहाज से कमजोरियां समझते थे और कसरत से उन पर इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे एक वलीउल्लाह की नजर में वो नेकियां शुमार हो सकती थी और उन अमाल पर उससे वहमो गुमान भी नहीं हो सकता था कि एक ये कोई मग़फ़रत का मुकाम है, मग़फ़रत तलब करने का यानी इस्तिग़फ़ार का मुकाम है। बस मेरी मुराद ये थी और ये है कि जमात के अखलाक के मेयार बुलंद करूं और उनकी तबीयतों में लताफत और नज़ाफत पैदा करने की कोशिश करूं। उसके नतीजे में खुद वो अपने आमाल के बेहतरीन निगरान बन सकते हैं। अगर ज़ौक का मेयार बुलंद ना किया जाए तो अखलाक का मेयार बुलंद नहीं हो सकता और बसा औकात इंसान खुद अपने से अंधेरे में रहता है। पर्दे उठने का जो मुहावरा आपने सूफिया की जुबान में सुना हुआ है ये एक हकीकी बात है, ये महज कोई सूफियाना जहन की कोई उनके ख्यालात की नाजुक ख्याली नहीं है बल्कि बहुत गहरे तजर्बे के नतीजे में बासूफिया ने तमसील के तौर पर यह बात पेश की कि इंसान पर्दों में रहता है और जब उसके पर्दे उठते हैं तो फिर वो आरिफ बिल्ला बनना शुरू होता है। तो हकीकत यह है कि पहले अपने नफ्स से पर्दे उठाकर अपने वजूद को देखना शुरू करें तब आप इस बात के अहल होंगे कि आप दुनिया के साथ हुस्न सुलूक कर सकें। जो लोग पर्दों में रहते हैं वो हमेशा मजलूम रहते हैं। चुनाचे मैंने बाज औकात ऐसे मियां बीवी के झगड़े सुने हैं जो बदनसीबी से दोनों ही पर्दों में थे। सारी उम्र मियां अपने आप को मजलूम समझता रहा और सारी उम्र बीवी अपने आप को मजलूम समझती रही, और किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि अपनी जात से बाला होकर उन पर्दों से बाहर आकर जो इंसान अपने नफ्स पर अंधेरों के पर्दे चढ़ाता चला जाता है और फिर आखिर उनमें डूब जाता है, उन पर्दों से बाहर आकर वो हकायक का मुशाहदा करे। और इसके कई तरीक हैं। वो जात जो इंसान के लिए जुल्मात पैदा करती है, एक और जाविये से देखा जाए तो वही जात इंसान की जुल्मत दूर करने का मुझे भी बन जाती है। हकीकत में आखिरी ताकत इंसान की अनानियत ही है, अपने नफ्स के साथ प्यार है जो मनफी चीजें भी पैदा करता है और मुस्बित चीजें भी पैदा करता है। मसलन ऐसे खावन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ माएं और अजीज दूसरे भी शामिल होते हैं, एक औरत निहत्थी बेबस उनके घर में है, उसको तानों का निशाना बनाते हैं, तरह तरह से बदसलूकियां करते हैं और बेख्तियार और बेबस घुलती चली जाती है। उनको कभी इस बात का ख्याल आ ही नहीं सकता कि वो ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद ऐसी कमजोरियां देखते हैं जो औरत में मौजूद होती हैं और फर्जी तौर पर फिर उन कमजोरियों को बढ़ाया भी जाता है। मामूली से नक्स भी उनको बड़े बड़े होकर दिखाई देते हैं और इसके नतीजे में जब वो शिद्दत करते हैं और सख्ती करते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि कितना दुख हो रहा है। इस बात को समझने के लिए वो अपनी जात के हवाले से एक और रंग में भी देख सकते हैं। उनकी बहनें हैं, उनकी माएं हैं, उनके और अजीज हैं जिनसे उनको गहरा प्यार है। वो अगर ये सोचें कि इनके साथ अगर ऐसे सलूक हों, जब ये दूसरों के बस पे हों, दूसरों के रहम करम पर हों, तो फिर इनका क्या हाल होगा। ऐसी सूरत में उनकी गैरत बहुत भड़क उठती है और वो जान देने और जान लेने पर आमादा हो जाया करते हैं। वो लोग जो दूसरों की इज्जतों से खेलते हैं, अगर वो इस हवाले से अपनी इज्जत के हवाले से मजीद गौर करें तो ये मालूम करके हैरान रह जाएंगे कि किस बेबाकी के साथ वो ऐसे कामों पर आमादा होते थे जो अगर उनसे किया जाए तो वो अपनी जान देने और दूसरे की जान लेने पर तैयार हों। तो नफ्स का हवाला दो तरह से हो सकता है। एक नफ्स का हवाला वो है जिसमें जालिम अपने अंदरूने से बेखबर दूसरे के नकाश ढूंढता चला जाता है और अपने बदले दूसरे से लेता चला जाता है। एक हवाला ये है कि अपने आप को इंसान जालिम समझे या उन लोगों के खिलाफ जुल्म का तसव्वुर बांधे जो उसको प्यारे हों, और फिर देखे कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो रहा। इस तरह इंसान की आंखें खुलती हैं और वो कुछ नजर आने लगता है जो पहले नजर नहीं आ सकता। दूसरा, जिंदगी के सफर में सबसे ज्यादा लताफत पैदा करने वाली चीज तकवा है। अगर इंसान तकवा इख्तियार करे और खुदा की तरफ उसके प्यार को हासिल करने का सफर शुरू कर दे तो इस सफर के आदाब का नाम तकवा है। मुराद यह है कि इंसान एक प्यारे का दिल जीतना चाहता है और हर वक्त इस बात पर निगरान रहता है कि मुझसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो जाए जिससे ये मुझसे नाराज हो जाए, जो इसको बुरी लगे। ये खौफ ही दरअसल तकवा है। तकवा का मतलब बास चीजों से बचना है और उर्फ आम में इसका तर्जमा खुदा का खौफ किया जाता है। खौफ किन मानों में, इस बारे में मैं पहले भी रोशनी डाल चुका हूं। आज मैं ये समझाना चाहता हूं कि खौफ, गालबन पहले भी कह चुका हूंगा लेकिन दोबारा इस बात पर इसरार करना चाहता हूं कि तकवा से मुराद ये खौफ है कि मैं वो उन बातों से बचूं जिन बातों से मेरे महबूब की नाराजगी मुझे अपने महबूब की नाराजगी देखनी पड़े और वो मुझसे खफा हो जाए। ये एक मनफी ताकत है जो मुस्बित नतायज पैदा करती है। तकवा बज़ाहिर एक मनफी ताकत है, बचने का नाम तकवा है। और बचने से मुराद जैसे कि आप सफर पे जा रहे हों, ठोकरों से बचना, राहजनों से बचना, कई किस्म के तफाकी हादसात और नुकसान से बचना, ये सारे बचने के मफहूम इसमें दाखिल हैं जो मनफी पहलू रखते हैं। लेकिन इनका जो मुस्बित नतीजा है वो जान, माल, इज्जत और खुशियों की हिफाजत है। इसीलिए कुरान करीम ने तकवा को खुशियों के मौके पर खसूसियत से बयान फरमाया। शादी ब्याह के मौके पर जो जिन आयात की तिलावत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तीन आयात में पांच मरतबा तकवा का जिक्र है। खुशी का मौका और खौफ की बातें, मुराद ये है कि ये खौफ तुम्हारी खुशियों की हिफाजत करेगा और तुम्हें कई किस्म के अजाबों से पनाह में रखेगा। चलते चलते आपको ठोकर लग जाती है, खुदा ना खास्ता गिर जाते हैं, कोई हड्डी टूट जाती है, ऐसे नुकसान भी हो जाते हैं बार दफा कि उम्र भर इंसान चलने से महरूम रह जाता है। सारी जिंदगी का अजाब है एक छोटी सी गफलत के नतीजे में। तकवा का सफर भी इसी किस्म का सफर है। इसको मामूली बात ना समझें। तकवा के फुकदान के नतीजे में इंसान बार दफा एक ऐसी ठोकर भी खा जाता है जो उसके लिए हमेशा के लिए रूहानी अजाब का मूजिब बन जाती है। बस इस पहलू से खुदा का तकवा अख्तियार करने की मैं नसीहत करता हूं मर्दों को भी और औरतों को भी। मर्दों के मुतल्लिक तो इसलिए खसूसियत से बात को बार बार दोहराता हूं कि मर्द अगर मजलूम हो तो उसके लिए निजात के रस्ते निस्बतन ज्यादा हैं और आसान हैं। मर्द बाहर की दुनिया में अपनी एक आजाद जिंदगी बसर कर सकता है। मर्द अमूमन ताकतवर होता है, इसलिए उस पर जिस्मानी दबाव और जबर भी नहीं हो सकता। मर्द को इख्तियार है जब चाहे घर छोड़कर बाहर निकल जाए और नाराजगी का इजहार करना चाहे तो दो दो तीन तीन रातें फिर ना आए। मर्द के ऊपर बिलअमूम औरत हाथ नहीं उठाती, अगर उठाती है तो फिर उसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो बाद तभी फौकियतें मर्द को हासिल हैं। उसके नतीजे में मैं खसूसियत से मर्दों को नसीहत करता हूं क्योंकि जिसको तभी फौकियतें हासिल हों, जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया या रिजालो कवामून आलम निसाए, मर्द औरतों से ज्यादा कवि और ज्यादा इस बात के अहल हैं कि उन्हें सिरात मुस्तकीम पर रख सकें। बस इस पहलू से मर्दों को अपने मुतल्लिक ये जायजा लेते रहने चाहिए कि मैं अपनी ताकत और फौकियत का नाजायज इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा ताला ने जो कवाम की सिफत मर्द को अता की है रहम दिली के नाम पर अपनी कवामियत को कुर्बान कर दे। ये बात भी जरूरी समझता हूं कि आपको समझाऊं। बीवियों से हुस्न सलूक, औरतों से नरमी और खुशखुलकी, उनके जुल्म को हौसले के साथ बर्दाश्त करना और उनसे अफ़ का सलूक करना और रहम का सलूक करना, ये सारी खूबियां हैं। ये मर्द के जेवर हैं जो उसे और ज्यादा खुदा की नजर में वीजा जेब बना देते हैं। लेकिन नरमी के नाम पर, प्यार और मोहब्बत के नाम पर उसूलों के सौदे कर लेना और अपनी कवामियत को कुर्बान कर देना, यह उसने खुल्क नहीं है बल्कि सूल खुल्क है, बदखुल्की का नाम है और खुदा ताला के यहां ये चीज काबिल कबूल नहीं है। चुनाचे ऐसे मर्द जो अपनी औरतों को बेराहवी पर में मुबतला देखते हैं और नरमी के नाम पर, हुस्ने सुलूक के नाम पर उनसे सरसे नजर करते हैं या दूसरों पर ज्यादती करते देखते हैं और वो समझते हैं कि हम ये औरत है, इसको हर्ज नहीं, हम इसे नरमी का सलूक करें और ये बेशक किसी के मुतल्लिक जुबान दराजी करती रहे, हम हौसले से इसे बर्दाश्त करें, वो मर्द यकीनन गलती पर हैं। हुस्ने सुलूक ये नहीं है, किसी को किसी के खिलाफ चुगली करते देखते हैं और मजे से बैठकर सुनते हैं उसकी बातें और उसको टोकते नहीं और उसे समझाते नहीं, इसका नाम हुस्ने खुल्क नहीं है। और बज़ाहिर नरमी जुल्म बन जाती है, बस जब मैं जुल्म की बात करता हूं तो इस्लाम की वसीतर इस्लाह में जुल्म की बात करता हूं। बाज़ दफा सख्ती जुल्म है, बाज़ दफा नरमी जुल्म है। चुनांचे बात को मुख्तसर करने के लिए मैंने हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया, क्योंकि वो मौका ऐसा नहीं था कि बहुत तफसील से ये बातें सबको समझाता। मैंने कहा कि आप पर अगर ज्यादती भी हो तो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग इख्तियार करें और आपने जो पाक नमूने औरतों के साथ सलूक के हमारे लिए हमेशा के लिए छोड़े हैं, जो हमेशा जिंदा जावेद रहेंगे, उनसे इस्तेफादा करें। अब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक यह था कि बहुत सी बातों में अपनी बेगमात की ज्यादतियां बर्दाश्त फरमाते थे और ऐसे मौके भी आए कि कुरान करीम में उनका जिक्र है, अल्लाह ताला ने आपको हदायत फरमाई कि अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगियां इतनी चाहती हो या दुनिया की जिंदगियां चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें दुनिया के माल देता हूं, रुख्सत कर देता हूं, उसमें सलूक के साथ अलहदा करूंगा, कोई सख्ती नहीं होगी, लेकिन मेरे साथ नहीं रह सकती। ये आखिरी और बहुत ही तकलीफ दे फैसला था जिसके पस मंजर में कुछ बातें होंगी। कुरान करीम ने उनकी तफसील बयान नहीं फरमाई, इसलिए हमारा भी काम नहीं है कि उन तफासील को तलाश करें। वैसे भी अदब का मुकाम है कि इन बातों में हरगिज खोज न लगाएं, लेकिन बिलअमूम ये यकीन करें कि हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन कुछ दुख महसूस फरमाया होगा, कोई तकलीफ पहुंची होगी, उस दुख के इजाले के लिए, उस तकलीफ को रफा फरमाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये ऐलान आम करने की हदायत फरमाई और आपको बड़ी जुम्मा फरमा दिया। उसके बाद यकीनन आपकी अज़वाज मुतहरात में कोई गैर मामूली पाक तब्दीली पैदा हुई होगी, क्योंकि फिर उसके बाद कोई तंबी नजर नहीं आती और कोई ऐसा वाक्या फिर दिखाई नहीं देता कि हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेगम से शिकवे के नतीजे में उसको अलहदा फरमाया हो। ये तो बिलअमूम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर पहुंची आपको भी, लेकिन आपने वसी हौसलगी का सबूत का इजहार फरमाया और बहुत बड़े खुले दिल के साथ उन चीजों से सर्फ नजर फरमाते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको खुद नसीहत फरमाई कि इस सूरत हाल में आखिरी इलाज अलहदगी है। इस मजमून को भी अहबाब जमात को खूब जहन नशीन रखना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें इस्लाह की कोशिश नरमी से ही जारी रहनी चाहिए और जहां तक नसीहत का काम का ताल्लुक है नसीहत से काम लेना चाहिए, मगर अगर पानी सर से गुजरता देखें तो इसी कुरानी हदायत के पेश नजर अपनी बीवियों के सामने ये बात खोल देनी चाहिए, इस सूरत हाल में हम इकट्ठे नहीं रह सकते और जितना जल्दी ये फैसला बात हो उतना ही बेहतर है। बाद लोग तकरीबन सारी उम्र बीवियों के साथ गुजार देते हैं, पांच पांच छह छह बच्चे हो गए और उसके बाद फिर डंडा उठाने की कोशिश करते हैं, ये तो जाहिलाना बात है। अगर वो जालिम भी थी तो इतना लंबा सा तुम क्या करते रहे हो। कुरान करीम ने बड़े लतीफ अंदाज में इसको यूं बयान फरमाया है कि जब तुम बीवियों को अलहदा करते हो तो उसने सलूक किया करो, याद करो कि तुम उनसे इस्तराहत करते रहे हो, बेतकल्लुफ लुत्फ उठाते रहे हो, और कुछ तो पास करो उन बातों का, कुछ तो हया करो। अल्फाज ये नहीं मगर मजमून यही बयान ही यही बयान हुआ है। तो मर्दों को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अख्तियार करना चाहिए, और उस उसवे में ये बात दाखिल है कि उसूल की कुर्बानी आपने कभी नहीं की। बेहद मोहब्बत और बेहद अफ़ का सलूक करने के बावजूद आपने कभी एक दफा भी किसी उसूल की कुर्बानी नहीं की। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतल्लिक ये रवायत मिलती है कि एक मौके पर किसी बीवी की तरफ से कोई तोहफा आया जिससे उनको तकलीफ हुई और आपने वो बर्तन तोड़ दिया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठे और बर्तन अपने हाथ से जोड़ा और फिर नसीहत फरमाई कि सही अच्छा बर्तन इसके बदले उसको भिजवाओ, और आपकी नाराजगी आपके चेहरे पर ऐसी वाजे लिखी गई थी कि बावजूद इसके कि कोई सख्त कलामी नहीं की लेकिन उसका दुख हमेशा के लिए हजरत आयशा के दिल पर नक्श हो गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक मौके पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी ज़ौजा मुस्लिमा का जिक्र आया तो हजरत आयशा सिद्दीका ने छोटी सी उंगली यूं उठाकर फरमाया वो, यानी वो छोटे से कद वाली चिंगली के बराबर, गालिबन हजरत सफिया की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया आयशा तुमने एक छोटी सी बात ऐसी की है कि अगर उसे समंदर में फेंका जाए तो सारा समंदर मुतग़य्यर हो जाए। कितना अजीम शान कलाम है, कैसी पाकीज़ा नसीहत है, और कितना सख्त जवाब है इस नरमी के अंदर, लेकिन बहुत ही मलायमत और बहुत ही ज्यादा लुत्फ के साथ आपने बात को पेश फरमाया। लेकिन अगर हसास आदमी हो तो वो हमेशा इसकी तकलीफ महसूस कर, इस बात की तकलीफ महसूस करता रहेगा कि मुझसे क्यों ऐसी गलती सरजद हुई जिसके नतीजे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे इसका नसीहत फरमानी पड़ी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत से यही मालूम होता है कि वो आपके विसाल के बाद मुद्दतों ये बात खुद अपने मुतल्लिक बयान फरमाती रहीं कि मुझे भी वो दिन देखना पड़ा जब मैंने ऐसी बात कर दी थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि देखो आयशा छोटी सी बात तुमने की है लेकिन इतनी तलख है कि अगर समंदर में डाला जाए तो समंदर मुतग़य्यर हो जाए, यानी उसका रंग बदल जाए, उसका मजा बदल जाए, उसकी कैफियत में तब्दीली पैदा हो जाए। अमर वाक़िया यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी मोहब्बत पर उसूल को कुर्बान नहीं फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्यार था वो ज़ाहिर व बाहिर है, हमेशा वो इस्लाम की तारीख में एक दरख्शंदा प्यार की मिसाल के तौर पर जिंदा रहेगा कि मर्द को औरत से कैसा प्यार होना चाहिए। लेकिन उस प्यार के नतीजे में हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसूलों को कुर्बान करने की इजाजत कभी नहीं दी गई, और हमेशा मौके पर सही नसीहत फरमाई। इसको कवाम कहते हैं, यही वो कवाम लफ्ज़ है जो कुरान करीम में मर्दों से मुतल्लिक आया है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि आप कवाम हैं, आप जुल्म से बाज रहें, और मतलब ये भी था कि जुल्म से बाज रखें, दोनों बातें कवाम में आती हैं। लेकिन अगर मगलूबुल गज़ब हो जाए, अगर छोटी सी बातों में तैश में आ जाए और ना सिर्फ अपनी बीवी को कोसना शुरू करें बल्कि उसके मां बाप को भी छेद जाए और तरह तरह से तानो तशनी का उनको निशाना बना दें तो ना ये हुस्ने खुल्क है, ना ये कवामियत है, ना ये मर्दानगी है, ये तो घटिया कमीनी जलील बात है। तो मैं अगर अहमदियों को ऐसी घटिया कमीनी जलील बातों से रोकता हूं तो किसी को इसमें नाराजगी की जरूरत नहीं। ये अपनी अहमदियों से मोहब्बत के नतीजे में ऐसा करता हूं। मैं जानता हूं कि हम में बहुत सी कमजोरियां हैं और मेरे फराइज में दाखिल है कि उन कमजोरियों को दूर करूं। मेरी तमन्ना है कि हमारा हर घर जन्नत निशान हो जाए। बस इस सभी तमन्ना के नतीजे में जब नसीहत करता हूं तो बज़ाहिर उसमें बाज़ दफा सख्त अल्फाज भी आ जाते हैं लेकिन हकीकत में किसी तलखी के नतीजे में वो बात नहीं होती। मतलब मेरा यह कहना कि मैं तुम्हें ऐसी सूरत में अजाब अलीम की खुशखबरी देता हूं। कुरान करीम ने अजाबों से मुतनब्बे करने के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए खुशखबरी के, तुम्हें अजाब की खुशखबरी देते हैं। और यह खुशखबरी ऐसी सूरत में दी जाती है जब इंसान ऐसी हालत में जान दे कि वो जालिम हो और बख्शिश तलब करने का कोई मौका बाकी न रहे। बस मुराद ये नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सारे मर्द ही जालिम हैं। मुराद ये थी कि मौत से पहले पहले अपने अंदर ऐसी पाक तब्दीली पैदा कर लो कि तुम्हें कुरान के अल्फाज और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबी अजाब अलीम की खुशखबरी ना दे रही हो, बल्कि अल्लाह ताला से पनाह, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। और अल्लाह ताला की नाराजगी से भी अल्लाह ही की पनाह मांगी जाती है और अल्लाह ही की पनाह में आना चाहिए। बस मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बात को समझकर हमारे मर्द और औरतें अपने अंदर पाक तब्दीली पैदा करेंगे। दूसरे उस मौके पर यह नसीहत करने की एक वजह यह थी कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि बुरी चीज अगर हो जाए तो उससे अच्छी बात निकाली जाए। और ये असलूब मैंने हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। मौत से जिंदगी तलब करने की ख्वाहिश एक ऐसा रुझान है जो कौमों को तरक्की की राह में बहुत आगे बढ़ा देता है। हर तकलीफ को अच्छी हालत में तब्दील करने की कोशिश करना ये बात ऐसी है जो एक तभी रुझान से ताल्लुक रखती है, वरना बाद लोग एक मौत के नतीजे में मर जाते हैं और हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बाद लोग मौत से जिंदगी पाते हैं और पहले से ज्यादा ताकत के साथ जिंदगी की राहों पर कदम मारने लगते हैं। तो ये वजह थी जो मैंने उस मौके पर खुसूसियत से नसीहत की। मैं चाहता था कि एक औरत की वफात के नतीजे में जो गम पहुंचता है वो सैकड़ों जिंदा औरतों की खुशियों में क्यों ना तब्दील कर दिया जाए, क्यों ना उससे हम ऐसा फायदा उठाएं जिसके नतीजे में हर घर में खुशियों की लहरें दौड़ें और उसका तभी फैज उस मरने वाले को भी पहुंचता रहेगा जो बहाना बन गई उस पाक नसीहत का जिससे घरों में पाक तब्दीलियां पैदा हुई। इस नेक नीयत और नेक तमन्ना के साथ मैंने वो नसीहत की थी, उसमें हरगिज कोई यकतरफा जुल्म नहीं था जिसके नतीजे में किसी मर्द के लिए नाराजगी की वजह हो। इस ज़िमन में मैं इन्ना लिल्लाह से मुतल्लिक भी आपको कुछ कहना चाहता हूं। दोस्त ताज़ियत के लिए तशरीफ ला रहे हैं, मर्द भी ख़वातीन भी दूर दूर से बड़ी मोहब्बत के साथ खतूत भी कसरत से लिख रहे हैं। मैंने अमीर साहब से ये गुजारिश की थी कि मेरा दिल बखूबी वाकिफ है और मैं सब अहमदियों के मुतल्लिक खूब एहसास रखता हूं जिन्होंने मुझे बताया है, उनके मुतल्लिक भी, जिन्होंने नहीं बताया उनके मुतल्लिक भी। अल्लाह ताला के फजल से जिस हद तक मेरी अहमदियों के हाल पर नजर है मैं उनके जज्बात उनकी कैफियत से वाकिफ भी हूं और दिल की गहराई से उनका एहतराम भी करता हूं। लेकिन मुसलसल अगर इसी तरह बाकायदा जमात के बाद जमात में आना शुरू किया तो उसमें कुछ कबाहतें भी हैं, इसलिए आप नरमी और मोहब्बत और प्यार से उनको समझाएं कि नाकदरी की वजह से मैं नहीं रोकता, बल्कि बाज तबाहते हैं जो मेरे पेश नजर हैं उसकी वजह से रोकता हूं। एक तो यह कि कुछ दिन के बाद जब गम अपनी शिद्दत के मुकाम से उतरना शुरू हो जाता है, जिस तरह पारा गर्मी से चढ़ता भी है और सर्दी पे उतरता भी है, गम की भी यही कैफियत होती है। जब उतरना शुरू हो जाता है तो फिर एक ऐसे मकाम पर आ जाता है कि उसके उस मौके उस गम की हमदर्दी के लिए फिर एक तभी जज्बा जबरदस्ती इंसान को मजबूर नहीं कर रहा होता, बल्कि इरादे और कोशिश से सोचकर बात बातें करनी पड़ती हैं। जब वफात की खबर ताजा थी या कुछ दिन तक ताजा रहती है तो उस वक्त जो बेकरारी से आज खुद लोग चले आते हैं उनको रोकना जायज नहीं है, लेकिन जब गम उस दर्जे से उतर चुका हो और फिर ये सोचकर कि हमें भी जाना चाहिए, फलां गया है और फलां गया है हम क्यों ना जाएं, जब एक मुनज्जम तरीक पर तहरीक के नतीजे में लोगों के वफूद तैयार किए जाएं तो उसमें कुछ तसन्नो पैदा हो जाता है। और फिर ऐसे लोग भी बीच में शामिल हो सकते हैं जिनको तकलीफ हो, जो माली लिहाज से दिक्कत महसूस कर रहे हों या औकात की मसरूफियत मसरूफ औकात होने की वजह से वो मजबूर हों कि किसी और काम को कुर्बान करके आएं, उनके दिल पर बोझ पड़ता है। और बाद लोग ये बयान भी नहीं कर सकते, बाद लोग समझते हैं अगर हमने कहा कि नहीं तो जो जिसने मुझे नसीहत की है या तवज्जो दिलाई है वो ये समझेगा इसको शायद कम मोहब्बत है, इसको कम ताल्लुक है, ऐसे नेक काम के लिए कहा और इसने आगे से जवाब दे दिया। तो बहुत से लोग बेवजह इब्तलाओं में पड़ जाते हैं और तसन्नो और तकल्लुफात के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। फिर मेरा वक्त भी मजबूरन एक ऐसे काम पर सर्फ होता है जिसकी मैं जरूरत नहीं समझता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इब्तदाई रेला जो गम का था उसमें सारी जमात मशरिक से मगरिब तक शिमाल से जुनूब तक शरीक थी, और उसका इजहार हो या ना हो, जिस तरह बेसाख्ता सारी दुनिया में दुआएं हो रही थी उन दुआओं का इल्म भी इस बात के लिए काफी है कि जमात को इसके इस वफात के नतीजे में गैर मामूली सदमा पहुंचा होगा, बल्कि बाद सूरतों में तो ऐसा सदमा कि मैं नहीं जानता कि उनको मुझसे ताजियत करनी चाहिए या मुझे उनसे ताजियत करनी चाहिए। तो जब इन सब कैफियात पर मेरी निगाह है तो क्यों रस्मी तौर पर हम इन बातों को इतना लंबा कर दें, इतना खींचें कि उसके नतीजे में तकल्लुफात पैदा हों और इब्तदाई जज्बात की पाकीजगी पर कुछ मैल आ जाए। इसलिए आज से मैंने अनीस साहब से गुजारिश की थी कि आप मेरी तरफ से जमातों को पैगाम दे दें, आम कभी मुलाकातों के दरमियान या वैसे अगर जरूरत समझें तो जिक्र कर दें, मगर उसकी भी जरूरत नहीं है, उससे बाज़ औक़ात बजाय फायदे के तकलीफ पहुंचती है और तबीयत में इस्तराब पैदा होता है। इसलिए हत्तल मकदूर अब इस मामले को रफ्ता रफ्ता खत्म करना चाहिए। साथ ही आने वालों को मैं ये नसीहत करता रहा हूं जो जिसमें अब मैं सब जमात को शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि अब इसके बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि रस्मी तौर पर वफूद का सिलसिला बंद हो जाएगा। वो नसीहत ये है, ये रही है और आइंदा भी रहेगी कि इन्ना लिल्लाह के पैगाम को समझना चाहिए। हमें ये नसीहत है कि जब किसी जान का या माल का नुकसान हो तो इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। बिलमूम लोग इसका पैगाम समझते नहीं हैं और बिलमूम रुझान ये होता है कि इन्ना लिल्लाह उस चीज पर पढ़ा जा रहा है जो चीज हाथ से जाया हो गई या निकल गई, हालांकि ये इन्ना लिल्लाह अपने ऊपर पढ़ा जाता है। खुदा तआला ने यह नहीं फरमाया कि इन्नहु लिल्लाह है व इन्नहु इलैहि राजिऊन, जो चीज तुम्हारे हाथ से निकली है वो अल्लाह की थी, वो अल्लाह की तरफ लौटनी ही थी, फिर क्या गम है। फरमाता है ये पढ़ा करो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और लाजमन उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। बस हर मौत इंसान को एक जिंदगी का पैगाम दे रही होती है, नुकसान का पैगाम नहीं दे रही होती। अगर आप इन्ना लिल्लाह के पैगाम को समझ जाएं तो दरअसल ये इन्ना लिल्लाह मरने वाले पर नहीं बल्कि जिंदा रहने वाले पर पड़ा जा रहा है, वो खुद अपने ऊपर पड़ रहा है और अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये तो चला गया जिसने जाना था, इसने तो खुदा की तकदीर के सामने सर खम कर दिया, लेकिन मैंने भी जाना है। इसकी तैयारी के वक्त खत्म हो चुके हैं, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए अभी कुछ वक्त बाकी है। बस वो अंजाम जिसको आप अपनी आंखों के सामने गैर की सूरत में देख रहे हैं, इन्ना लिल्लाह आपको ये मुतवज्जे करता है कि ये तुम्हारा भी अंजाम होगा। एक दिन तुम भी इसी तरह जान दे रहे होगे या दे चुके होगे और लोग इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे होंगे और उन बेचारों को भी गफलत की हालत में पता नहीं होगा कि ये इन्ना लिल्लाह तो इस पर नहीं बल्कि हमें अपने ऊपर पढ़ना चाहिए। बस इन्ना लिल्लाह का पैगाम यह है कि ऐ खुदा, हम समझ गए, हमने हकीकत को पा लिया कि हम तेरे ही हैं, तुझ ही से वजूद में आए थे। लिल्लाह का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तेरे हैं, यह कि तुझसे ही पैदा हुए, तेरी ही जात हकीकी और दायमी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जो कुछ वजूद में आता है वो तुझसे वजूद में आता है और जो खालिक है वही मालिक भी हुआ करता है। बस इन्ना लिल्लाह में ये सारी बातें शामिल हैं कि ऐ खुदा, हम तेरे हैं इसलिए कि तेरे से वजूद में आए, तूने ही हमें अदम से वजूद की खलत बख्शी और हमारा तुझसे जुदाई का सफर एक दिन खत्म हो जाएगा और फिर लौटकर हम तेरी तरफ वापस आएंगे। इस अरसे में जो तुझसे अलग रहकर हमारी जिंदगी का अरसा गुजरा, हमने जो कुछ किया उसका जवाब हमने तुझे देना है और किस कैफियत में ये जुदाई का अरसा गुजरा, इस कैफियत की तरफ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन आपको मुतवज्जे कर रहा है और आपको खबरदार कर रहा है। क्या खुदा के होते हुए और खुदा का रहते हुए आपने खुदा से अलहदगी का ये सफर ये वक्त गुजारा या गैरों का बनकर ये वक्त गुजारते रहे? अगर इस अरसे में गैर के हो गए तो फिर किस मुंह से खुदा की तरफ वापस जाएंगे? ये पैगाम है जिसको हर इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाले को समझना चाहिए और इसके नतीजे में अपने अंदर कुछ पाक तब्दीलियां पैदा करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये शऊर बेदार होना चाहिए कि हम इस दुनिया में जिसके मर्जी हो चुके हों, हकीकत में हम खुदा के हैं, वही मालिक है। ना हम अपनी बीवी के, ना अपनी बहन के, ना मां के, ना बाप के, ना बच्चों के, जिसके हैं उसी की तरफ जाएंगे और जब वो बुलाएगा हमें इख्तियार नहीं है कि ना कर सकें। तो हम जब दूसरों के बनते हैं तो क्या दूसरों के बनते हुए खुदा को छोड़ तो नहीं देते, या खुदा से ताल्लुक खता करके तो नहीं गैरों के बन रहे? अगर ऐसी हालत में गैरों के बन रहे हैं तो जब आप खुदा की तरफ जाएंगे तो गैर बनकर जाएंगे, गैर होकर जाएंगे और उस सूरत में आप खुदा के सामने जवाबदेह भी होंगे और हकीकत मुहावरे के मुताबिक उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बस हर मौत से एक जिंदगी का पैगाम मिलता है और हर मौत से हमें जिंदगी का पैगाम हासिल करना चाहिए। अगर एक मरने वाला अपने प्यार करने वालों को जिंदा कर जाए तो कितनी मुबारक मौत है। अगर उनके अंदर एक जिंदगी का शऊर बेदार कर जाए और उनको याद दिला जाए कि तुमने वहीं आना है जहां मैं जा रहा हूं, लेकिन तैयारी करके आना, अगर मुझसे गफलत की हालत में कुछ दिन बसर हो गए तो मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगना, लेकिन खुद बाहोश इस बात को खूब तरह जहन नशीन करके रहना कि मैंने भी आपको खुदा की तरफ लौटना है और उसके सामने अपने आमाल का जवाब देना है। ये जो इन्ना लिल्लाह का पैगाम है ये बहुत ही जिंदगी बख्श है और मौत से जिंदगी हासिल करने के मुतल्लिक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बकसरत और बार बार नसीहत फरमाई है। आपके मलफूजात में भी और कुतुब में भी, आम तहजीदात में भी ये बात कसरत से मिलती है कि मौत से सबक सीखो और हमेशा इस बात को पेश नजर रखो कि तुमने खुदा के हजूर हाजिर होना है। बस हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो नज़म एक ना एक दिन पेश होगा, तू खुदा के सामने, फना के सामने चल नहीं सकती किसी की कुछ कजा के सामने, यही मफहूम पेश कर रही है, यही तवज्जो दिला रही है कि अपने मरने की तैयारी रखो। नौजवान बाज दफा ये समझते हैं कि उनकी लंबी जिंदगी बड़ी हुई है, बड़ा वक्त है, कुछ देर दुनिया के ऐश कर लें, बाद में देखी जाएगी, लेकिन मौत की तो खबर ही कोई नहीं, उसका तो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब चाहे खुदा जिसको चाहे बुला ले। इसलिए इन्ना लिल्लाह के पैगाम समझने के साथ उस दुआ की तरफ भी इंसान की तवज्जो होती है, रब्बना व तवफ्फना माल अबरार, कि ऐ अल्लाह हम गफलत की हालत में बहुत सा वक्त गुजार चुके और भी ऐसी हालतें हम पर आ सकती हैं जबकि हम तेरे होते हुए गैर के हो जाएं, लेकिन हमारी ये इल्तिजा है कि हमें बुलाना ना जब तक हम तेरे ना हो चुके हों। तवफ्फना माल अबरार का यही मतलब है कि अबरार के साथ शुमार करना, और अबरार उन लोगों को उनको कहा जाता है जिनकी नेकियां उनकी कमजोरियों पर गालिब आ चुकी हों, जब वो मरें तो खुदा के हजूर नेकों में शुमार हों। बस ये दुआएं भी अपने लिए करते रहना चाहिए। जो शख्स मौत से बाखबर रहे उसे जिंदगी में एक नई जिंदगी मिल जाती है, और इन्ना लिल्लाह के पैगाम को समझने के नतीजे में एक इंसान आलम बका में दाखिल हो जाता है। इन्ना लिल्लाह का पैगाम आपको मौत से डराता नहीं बल्कि मौत के खौफ को मार देता है। अगर पूरी तरह आप इस पैगाम को समझ लें तो आपको यह मालूम होगा कि आप खुदा के हैं, खुदा के साथ रह रहे हैं, खुदा के साथ रहेंगे और उसी की तरफ वापस जाएंगे। ये जो खुदा तआला के क़ुर्ब का दायमी एहसास है और उसका हो रहने का एहसास है, ये पैगाम जो आपको मिलता है कि तुम उसके हो तो उसके बनकर दिखाओ, ये एक ऐसा जिंदगी बख्श पैगाम है जो इंसान को आलम बका में ले जाता है। मौत की दहलीज उसकी पहली और दूसरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं करती बल्कि एक कदम उठाने वाली बात है, एक कदम यहां से उठा दूसरी तरफ चला गया, लेकिन ये लोग हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। बस इन्ना लिल्लाह के पैगाम में बका का पैगाम है। मैंने अपनी बच्चियों को उनकी वालदा की वफात पर जो बातें समझाई उनमें एक ये बात भी थी कि मैंने बहुत गौर किया है, मुझे तो मौत का कोई खौफ डर नहीं, खुदा के हजूर पेशी का डर है लेकिन मौत का डर कोई नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल मामूली हैसियत है, कोई जिस तरह आज आए कल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर फिक्र होती है तो उन लोगों के गम की जो पीछे रह जाएंगे, इसके सिवा मुझे मौत के तसव्वुर में कोई भी अजनबियत दिखाई नहीं देती, कोई भी ऐसी तकलीफ दे बात नहीं है जिसके नतीजे में मैं बेचैन हूं। और ये जो पैगाम मुझे मिला है ये इन्ना लिल्लाह के नतीजे में मिला है। इस पर जब मैंने गौर किया तो मुझे समझ आई कि हम जिसके हैं अभी कल जब उसकी तरफ लौटेंगे उस वक्त उसके नहीं होंगे, इसलिए लौटेंगे कि उसके हैं, इन दो चीजों में फर्क है, उसकी तरफ लौट कर उसके नहीं होंगे बल्कि हैं इसलिए लौटेंगे, और अगर उसके हैं और उसके बावजूद उसके ना रहे हों तो फिर खौफ का मुकाम है, फिर बहुत ही दर्दनाक और तकलीफदेह सूरत हाल पैदा हो जाती है। जहां तक लौटने का ताल्लुक है उस इंजाम को तो कोई टाल ही नहीं सकता, जो चाहे कर ले, बड़े से बड़ा आदमी भी आखिर जाएगा, छोटे से छोटा आदमी भी जाएगा, बूढ़ा बच्चा, हर एक ने वहां आखिर जरूर जाना है। बड़े बड़े अतिब्बा जिन अमराज के माहिर होते हैं, बसा अवकात अल्लाह ताला की तकदीर उनको दिखाती है कि असल गलबा मेरा ही है, और उन्हीं मर्जों से मरते हैं जिन मर्जों की शफा में वो शोहरत पा चुके होते हैं। हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट थे जो दिल की बीमारी से गए, उनका इल्म उनके काम नहीं आ सका। बस शफा का इल्म भी और दुआ भी, ये दोनों चीजें मौत के सामने आजिज आ जाती हैं। और इन्ना लिल्लाह ने जो जिस कुव्वत के साथ इस मज़मून को हमारे सामने रखा है उसका इससे ताल्लुक है, तभी मौत के वक्त इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है। खुदा का होना एक गालिब की हकीकत है और एक दायमी हकीकत है, उसकी मलकियत हमेशा बाकी रहने वाली चीज है, बाकी सब चीजें आ रही हैं, और मौत का मलकियत से ताल्लुक है, क्योंकि जिसकी असल मलकियत है वो बिल आखिर नुमाया होकर उसकी दिखाई देगी, और सब धोखे बीच के उड़ जाएंगे जिसमें इंसान अपने आप को मालिक समझता रहा, खा आलमी तौर पर खा मुस्तकिल तौर पर, सब मलकियतें फना हो जाएंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कुरान करीम ने मालिक यौमुद्दीन की ही तारीफ फरमाई, वमादरा का मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमिल्लाह, कि तुम्हें क्या पता कि यौम दीन क्या चीज है। जब हम मालिक यौम दीन कहते हैं तो खुदा फरमाता है कि भी सोचा भी है कि यौम दीन होता क्या है, कैसे तुम्हें समझाएं कि यौम दीन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई जात ना अपने लिए ना किसी और के लिए किसी चीज की मालिक होगी, कोई जान ना किसी जान की मालिक होगी, ना किसी और जान की अमीन होगी, ना अपनी मालिक होगी, ना अपने लिए कुछ अमानत अपने पास रखती होगी, सब कुछ खुदा की तरफ लौट जाएगा, सिर्फ एक मालिक रहेगा और वो खुदा की जात है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं रहेगा। तो जब मलकियतें सारी फना हो जाने वाली हैं, इसी का नाम मौत है, यानी गैरुल्लाह की मलकियत की जात में मौत शामिल है, क्योंकि वो मलकियत दायमी हो नहीं सकती, इसलिए किसी को हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती। खुदा की तरफ लौटने का मतलब उसकी मलकियत का इसका इदराक करवाना है, ये बताना है कि मालिक हकीकी वही है, इसलिए तुम उसकी तरफ लौटोगे। और अगर वो मलकियत चोरी कर चुके हैं आप, मालिक ना होते हुए उसका गलत इस्तेमाल कर बैठे हों, और लोगों के मालिक बन चुके हों, और नाजायज उन पर कब्जे किए हुए हों, उनकी इज्जतें, उनकी जानें, उनके अमवाल, उनकी खुशियां आपके हाथ में महफूज ना हों, और नाजायज आपने उन पर तसरुफ कर लिए हों, तो फिर जब मालिक की हकीकी के सामने पेश होंगे तो यकीनन जवाब देंगे। बस इन्ना लिल्लाह के अंदर बड़े गहरे, बड़े तफसीली जिंदगी के पैगाम हैं, और हर मौत मोमिन को ये जिंदगी बख्श जान पे ला के जाती है। जब वो पढ़ता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये उसका आबे बका है जिसे वो पीता है। लेकिन अजीब तरह लोग पीते हैं कि ये आबे बका उनको हजम नहीं होता, उनको ये पता ही नहीं कि ये क्या पी रहे हैं, वो समझते हैं ये इसके लिए, इस मरने वाले के लिए जहर का प्याला है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये तो गया और खत्म हो गया, बस इससे आगे कुछ नहीं, मैं बाकी हूं। बिल्कुल उलट बात है, पैगाम तो ये था कि तुम बाकी नहीं रहोगे, और आर्जी तौर पर किसी गलतफहमी में मुब्तला न हो जाना। ये जाने वाला इस बात को यकीनी बनाकर जा रहा है कि तुम भी नहीं रहोगे, और लाजिमन तुमने अपने खुदा की तरफ जाना है। बस इतनी खती हकीकत को भुला देना और अपनी जिंदगी को गफलत की हालत में बसर करना और जुल्म की हालत में बसर करना बहुत बड़ा जुल्म है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जमात इस नसीहत से फायदा उठाएगी, اپنے حال پر غور کریں، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، تو آپ کو اپنی ذات میں سے ہی، اپنی ہر ناکامی میں سے مرادیں مل جائیں گی. اگر اس کے برعکس غیروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی عادت ڈالی اور دوسروں میں ظلم تلاش کیے اور اپنے ظلم سے غافل رہے، تو پھر آپ کا ہر قدم موت کی طرف اٹھ رہا ہے، غیر اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ خدا کے نہیں رہے اور خدا کے نہیں ہو رہے. اس ظلم کی حالت میں جان نہ دیں. خدا کرے کہ ہم میں سے ہر مرنے والا ایسی حالت میں جان دے رہا ہو کہ اس پر راضیت مرضیہ کی آیت صادق آ رہی ہو، وہ راضی حالت میں خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہو اور خدا کی رضا پا کر خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہو.